آخر سیرت صحابہ و خلفائے راشدین تو مکمل ہو گئی تھی، پھر عشرہ مبشرہ. چلیں، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلك لمن خشی ربہ. وقال الله تعالى في مقام آخر، وكل وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ جو ہماری کلاس ہے، آج کی آخری اور اس سلسلے کی چوتھی کلاس جو سیٹرڈے کو ہوا کرتی ہے، اس میں ہم پچھلے ہفتے تک عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا ٹاپک پڑھ رہے تھے. تو ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سب سے پہلے پڑھی تھی اسی والی کلاس کے اندر، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم کیا پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھا کرتے تھے. تو وہ سورہ کہف سے ہم نے شروع کری تھی یہ کلاس. سورہ کہف ختم ہونے کے بعد پھر سورہ قصص پڑھی تھی، اور سورہ قصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں آخر میں فرماتے ہیں کہ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى المعاد، یا الى معاد، ٹھیک ہے، کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے نا، تو وہ ضرور بالضرور وہ آپ کو لوٹائے گا آپ کی لوٹنے کی جگہ پر. ٹھیک ہے، تو اس وقت دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیوں نہ پڑھنا شروع کریں. تو پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور میرے خیال میں پھر اسی کے دوران ہی پھر دوسرے سلسلے بھی ساتھ ساتھ ایڈ آن ہونا شروع ہو گئے تھے. مسلم ہیروز والا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد آداب والا سلسلہ، پھر قصص الانبیاء والا سلسلہ اس کے اندر ماشاءاللہ ایڈ ہوا، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو پھر صحابہ کرام. تو صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلفائے راشدین آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم نے اسی کو ایکسٹینڈ کیا نا، یعنی خلفائے راشدین کو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا کس میں، عشرہ مبشرہ والے سلسلے کے اندر، کیونکہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے اندر خود بھی داخل ہیں. تو مزید 6 کو ہم نے پڑھا، اور وہ سلسلہ پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم نے پڑھ کے مکمل کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ ساری بات کرنے کا، لیکن اب سو گئی، تو اب اس سے ایک پیٹرن سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، اب تک کم از کم یہ پیٹرن چلتا آ رہا ہے کہ سم تھنگ از لیڈنگ ٹو سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، اصل میں تو اللہ از لیڈنگ ایوری تھنگ. آپ کے پیچھے مصطفیٰ صاحب جو ہے نا وہ چپ گئے ہیں. چلیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ از میکنگ سم تھنگ لیڈ ٹو سم تھنگ ایلس نا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو عبداللہ موٹن صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ بھئی یہ کلاس شروع کرائے. ٹھیک ہے، تو کلاس شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ آیت کو یوز کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کروانے پہ. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لاجیکلی جو ہے وہ سیرت صحابہ آتی ہے. تو اب اسی طریقے سے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کے ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل کیا، تو دیٹ لیڈ ٹو دا نیکسٹ صحابی. ٹھیک ہے، وہ کون سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو آج ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی باتیں کریں گے، اور ان کے بعد پھر وی ول سی کہ واٹ اٹ از لیڈنگ ٹو. ٹھیک، دیکھیں گے پھر اس کے بعد. تو پہلے تو آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد پھر صحابہ کی جو نیکسٹ کلاس آتی ہے بدری صحابہ، ان کے اوپر بات کریں گے، پھر ان کے بعد دوسرے کلاس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا وہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے کیا کریں گے. خیر، तो मुआज़ बिन जबल रतान का जिक्र आया था पिछली क्लास में कि नहीं आया था? वो कैसे आया था वो कोई बताएगा? किसी को याद है कि पिछली क्लास में भी मुआज़ बिन जबल रतान का जिक्र आया था क्या? हाँ, उनको अपना खलीफा तो नहीं, नायब कहेंगे, रिप्रेजेंट या अपना रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अबू उबैदा बिन जर्रा रतान जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे ना यहाँ पे शाम के अंदर, ठीक है? तो जब उनका इंतकाल, बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि भाई सारे लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं इस प्लेग के अंदर, तो मेरी भी शहादत करीब ही है, तो अब मेरे बाद कोई नायब होना चाहिए, तो उन्होंने पहले से मुआज बिन जबल रतान को बना दिया अपना नायब, ठीक है? और दूसरी बात ये भी हमने पढ़ी थी कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ही नेचुरली उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, और उसके बाद जो तकरीर भी करी उनके बारे में कि मैंने ऐसा लोगों, मैंने ऐसा शख्स कभी भी नहीं देखा कि इतना साफ गो भी हो, इतना दिल का भी साफ हो, इतना खैर ख्वाह हो, इतना अच्छा हो, इतना ये हो, इतना वो, ठीक है? तो ये भी हमने मुआज बिन जबल रतान के बारे में पिछली क्लास में ही बातें कर ली थी। अब जो है ना, मुआज बिन जबल रतान के मजीद कुछ और बातें आपके सामने हमने रखनी थी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये किताब जिसका नाम है तज़किरे, ठीक है? तज़किरे किसकी किताब है? हजरत मुफ्ती मौलाना शेखुल इस्लाम मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकात उनकी, ठीक है? और ये किताब एक और भी तरीके से बहुत अहम है कि आप में से अगर कोई पूछता है ना कि मैं कौन सी वाली किताब पढ़ूं, और उसको उर्दू पढ़नी आती भी है, तो हम उसको तज़किरे ही पढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है? क्योंकि अच्छी, माशाल्लाह, इतनी अच्छी किताब है और इतनी अच्छी कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज है, ठीक है? इसके अंदर ये बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर ए गुड रीडर, ठीक है? तो इसमें ना फिर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तस्करे जो शुरू किए हैं, ठीक है, तस्करे मतलब जिक्र करना, वो जो शुरू किए हैं तो वो अम्बिया अलैहिस्सलाम से शुरू किए, फिर नबी अलैहिस्सलाम का तस्करा, फिर जो है वो बल्कि सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का तस्करा है, फिर शुएब अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, हज़कील अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बाद सहाबा कराम का तस्करा। तो कुदरतन इन्होंने सहाबा कराम में सबसे पहले अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु को रखा है, ठीक है? तो अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी हमने भी पढ़ के मुकम्मल किया, फिर और बहुत सारे सहाबा का तस्करा है, और सबसे आखिरी सहाबा, सुभान अल्लाह, सहाबा में सबसे आखिरी सहाबा मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अजीब तरतीब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस किताब में रखी कि सहाबा में सबसे पहले अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा किया, और सबसे आखिर में मौज बिन जबल हजरत आने का तस्करा किया। तो हम इसमें से पढ़ते हैं और साथ साथ बात करते चले जाएंगे कि हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन वो अजीम और जलील कदर सहाबी हैं कि जिनको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलमुहुम बिल हलाल वल हराम फरमाया, ठीक है? कि सबसे बड़े हलाल और हराम के आलिम कौन थे? मुआज बिन जबल रजी अल्लाह, ठीक है? अच्छा, ये कुरैशी नहीं थे, ये मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा नहीं आए थे, बल्कि ये अंसारी सहाबी थे, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में इल्म है कि ये अंसारी सहाबी, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा याद रखें कि ये अंसारी सहाबी में से हैं, यानी मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक जो था वो खजरज कबीले से था, जैसे कि आपको उम्मीद याद होगा कि मदीना मुनव्वरा में दो मेजर ट्राइब्स रहते थे, एक का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज, ठीक है? तो ये खजरज के कबीले से ताल्लुक रखते थे, और हिजरत से पहले जब 70 अंसार मदीना ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके बैत उकबा की थी, तो ये उनमें भी शामिल थे, ठीक है? बैत उकबा का याद है? इसकी मस्जिद देखी है, मस्जिद उकबा, तो जो हज पे गए हैं, अब तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे जा ही नहीं सकते उसको, ठीक है? तो जब बड़े हो जाते हैं तो हज पे जाते हैं, लेकिन पहले तो बच्चे भी जाते थे, और अभी भी अगर आप हज के अलावा भी वहां पे जाएं ना, मक्का मुकरमा में अगर आप गाड़ी से जाएं मिना की तरफ, तो मिना में सबसे पहले क्या चीज नजर आती है? शैतान, ठीक है? वो जमरात वाली जगह नजर आती है, बड़ा, इतना बड़ा सा उन्होंने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो जमरात का जो वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर वहां पर ये मस्जिद उकबा है, और वो वहां क्यों बनाई गई है? क्योंकि वहां पर ही आकर के सहाबे कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से बैत करी थी, तो वो उस जगह के नाम के हिसाब से, क्योंकि जगह का नाम उकबा था, तो वो बैत उकबा से मशहूर हो गई थी। इट इज पार्ट ऑफ मीना, और उस जमाने में जाहिर है ये कोई सड़क वड़क नहीं बनी होती थी, ये फ्लैट सरफेस नहीं थी, बल्कि यहाँ पे पहाड़ियां और टीले वगैरह इस किस्म की चीजें थी। अब उसको फ्लैट करके उन्होंने मस्जिद बना दिया बाद में, नहीं उस वक्त बन गई थी, लेकिन उस वक्त तक इसको फ्लैट कर दिया होगा, कुछ भी क्या होगा, फ्लैट करके अब उसको मस्जिद बना दिया। तो मस्जिद उकबा आज भी वहां पर मौजूद है। वहां पर सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से 7 हजरात ने आकर के बैत कर ली थी, ठीक है, और फिर अगले साल ये तादाद बढ़ करके 73 हो गई थी, जिसमें 3 औरतें थी और बाकी सारे मर्द थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाकयात से। तो तकरीबन 70 मर्द और 3 औरतें इन्होंने आकर के ना बैत उकबा सानी अगले साल में करी थी, और फिर नबी अलैहिस्सलाम को जो है ना वो दावत दी थी कि आप मदीना मुनव्वरा आ जाओ, ठीक है, और वहां पे हम आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल कर लिया था। बड़ी लंबी इसकी डिटेल्स थी जो कि हमने सीरत के दौरान पढ़ी थी। देखें, दीन को समझने के लिए ना, अगर समझना है कि ये दीन है क्या, ये हिदायत का पूरा अल्लाह ताला की तरफ से एक निसाब आया हुआ है, करिकुलम आया हुआ है, ये है क्या ना, तो उसको समझने के लिए दो सोर्सेज ही है ना हमारे पास, ठीक है, बुनियादी दो सोर्सेज। वैसे तो और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं, लेकिन जो मेन फंडामेंटल सोर्सेज हैं, एक कुरान है ना, ठीक है ना, कुरान को पढ़े बगैर समझे बगैर तो आप दीन को नहीं समझ सकते। तो कुरान मजीद इज द फर्स्ट सोर्स, लेकिन कुरान मजीद को भी सही समझना, गलत ना समझना, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद को अगर आपने सिर्फ तर्जुमे से समझा या सिर्फ अरबी जुबान सीख करके आपने समझ लिया कि कुरान मजीद की का ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये हुक्म है, या ये बात है, ये बात है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आप मिसलीड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मिसलीड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर सकते हैं। इस वजह से जो दूसरी सोर्स है वो है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुआ और नबी अलैहिस्सलाम ने ही लोगों को बताया, तो नबी अलैहिस्सलाम का जो अपना अमल है ना, जो उन्होंने जाहिर है अपनी जिंदगी में क्या होता है, इंसान का अपना अमल होता है, जो उसने किया, कहां से कहे, कैसे किया, किससे कैसे बात करी, किससे लड़ाई करी, किससे लड़ाई नहीं करी, किससे दोस्ती करी, किससे दुश्मनी करी, किससे क्या किया, किससे क्या किया, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ही पता चलता है कि भाई कुरान मजीद का इस आयत का क्या मतलब है। अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और कुरान मजीद को जो है वो अपनी अकल या अपने जमाने के हालात के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली गलती करेंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली गलती करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वी हैव टू कीप बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, ठीक है, समझने के लिए भी, अपने अमल के लिए भी, कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी। सीरत के बगैर, सीरत को समझे बगैर हम नहीं समझ सकते, कुरान मजीद को भी नहीं समझ सकते, पूरे दीन को ही नहीं समझ सकते हम। तो जिनको अल्लाह ताला ने कुछ पढ़ने लिखने का कुछ शौक अता फरमाया है, तो वो रादर देन कि वो कुछ और चीजें पढ़े, जैसे कुछ नौजवान हमारे माशाल्लाह पढ़ने के बड़े शौकीन थे, वो लगे हुए थे अपने इल्मुल कलाम के अंदर, भाई खुदा के बंदे कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं, पढ़ने का जब शौक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है पढ़ने का शौक है, तो आप कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कुरान मजीद इज फर्स्ट, इसको आप कभी भी सेकंड नहीं कर सकते, इसको आप कभी थर्ड नहीं कर सकते, और कुरान मजीद के साथ कपल टुगेदर विद कुरान मजीद इज नबी अलैहिस्सलाम सीरत, ठीक है। तो उसमें फिर ये सारी बातें समझ में आती हैं कि बैत उकबा क्यों हुई, कैसे हुई, और आप ने हिजरत क्यों करी, कब करी, कैसे करी, ठीक है, सारी चीजें फिर समझ में आती है ना। बहरहाल, तो बैत उकबा में हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ही शामिल थे, लेकिन उस वक्त इतने कम सिन थे, यानी इतने कम साल के थे कि आपकी दाढ़ी भी नहीं निकली, ठीक है। तो अच्छा, अब थोड़ा सी कैलकुलेशन पहले तो करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी कर लेते हैं कि इसमें भी ये हजरत ने लिखा है ये गजवा बदर में आप 20 साल के थे, ठीक है, तो बैत उकबा के बाद कितने साल के होंगे, गजवा बदर कौन सी हिजरी में हुई थी, भाई बैत गदर बदर तो पहले डिसाइड करें ना कौन सी हिजरी में हुई थी। जी 2 हिजरी में हुई, ठीक है, 2 AH, यहाँ पे भी जवाब आया था। अच्छा ये थोड़ी सी अलार्मिंग है ये सिचुएशन, कि सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया इसका, क्यों? ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट्स में से कि गजवे बदर कब हुआ था, ठीक है, तो 2 लोगों को इसका जवाब मिला। एवरी वन शुड हैव रेज देयर हैंड्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर नॉट इन टच विद सीरत, पढ़ा भी अगर है तो भी फिर याद कुछ भी नहीं है, तो इतना मेजर चीज वो याद होनी बहुत जरूरी है कि गजवे बदर कौन सी ईयर में हुई थी। जी देखिए पता था उन्होंने पढ़ी हुई थी, सही, तो 2 हिजरी में हुई थी, तो 2 साल पहले जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, और उससे जो है ना वो 1 साल पहले या 2 साल पहले ये बैतुल बसानी हुई, ठीक है, तो टोटल जो है वो 4 साल, तो उस वक्त यानी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र जो है वो 16 साल होगी या 17 साल होगी, ठीक है, तो उस वक्त तक जो है ना वो उनकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, ठीक है, कुछ लोगों की होती है ना जरा जल्दी ज्यादा निकलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की जरा देर में निकलती है, तो दाढ़ी का हुक्म क्या है शरीयत के अंदर कि इसको काटना नहीं है जब तक ये एक फिस्ट से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, एक फिस्ट यानी यूं करके पकड़ते हैं ना तो उसके बाद फिर काट सकते हैं, क्योंकि एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उन्होंने काटी, ठीक है, लेकिन एक फिस्ट से अगर कम है तो इसको काटने की इजाजत नहीं है, ठीक है, तो कट यानी इजाजत नहीं है, तो मतलब क्या होगा कि काटेंगे तो फिर क्या होगा, पिटाई होगी, बस पिटाई होगी, या पिटाई चाहिए तो ठीक है फाइन यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, लेकिन पिटाई भी साथ होगी, सही है, तो दाढ़ी को नहीं काटने की कल नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया सिवाय एक मुश्त से ज्यादा जब हो जाए, और अगर आपकी एक मुश्त से ज्यादा बढ़ी नहीं रही आती नहीं आपकी तो जस्ट लीव इट। अदा जी क्या फरमाया करते थे, किसी को याद है अदा जी क्या फरमाया करते थे दाढ़ी के बारे में? अदा जी बड़े मजे की बात करते थे, अदा जी फरमाते थे अगर किसी को देखते थे ना कि उसकी जो है ना वो बढ़ नहीं रही, एक नेचुरली नहीं बढ़ रही है, एक होता है कट रही है इस वजह से नहीं बढ़ रही, फरमाते थे इस दाढ़ी का पीछा छोड़ दो क्या कहते थे, इस दाढ़ी का पीछा छोड़ दो, ठीक है ना, स्टॉप परसुइंग इट, राइट, कि मुझे इसको यूं करना है यूं करना है यूं करना है यूं करना है, ठीक है। अच्छा एक और तफसील आ गई बीच में कि ये जो बच्चा दाढ़ी, पता है क्या होती है बच्चा दाढ़ी, हमारी तो बच्चा दाढ़ी भी मिक्स हो गई है ना अब्बू के साथ, लेकिन कुछ लोगों की बच्चा दाढ़ी अलग होती है, छोटी यहाँ पे जो होती है ना ये बिल्कुल लिप्स के नीचे जो होती है ना इसको बच्चा दाढ़ी कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये होती है अबू दाढ़ी, सही, तो बच्चा दाढ़ी भी जो है ना वो भी अब्बू के ही हुक्म में है, तो बच्चा दाढ़ी को भी नहीं काट सकता है वो भी यानी छोड़ देने के हुक्म, ठीक है। अच्छा काटना किसको है, मूछों को, ठीक है, मूछों को बढ़ाना जो है ना ये जायज नहीं है, जो बढ़ाता है वो गलत करता है, उसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो ये लंबी लंबी यूं करके कुछ लोग यहां लटक रहे होते हैं, ठीक है, तो नहीं इसकी इजाजत नहीं है, मूछों को मूंढने का हुक्म है नबी रसूल, ठीक है, और इसके अंदर एक्सेस करने का हुक्म है, यानी इसमें ज्यादा मूंढना, यानी ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा मूंढ लिया वो छोड़ दिया उसके बाद, नहीं बल्कि इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसको लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना उर्दू में मुबालगा करना, एग्जैक्ट, मूछों के मूंढने में मुबालगे का हुक्म है, ठीक है, और दाढ़ी को छोड़ देने का हुक्म है, जस्ट लीव इट बी, ठीक है ना, अब एक मुझ से ज्यादा है तो फिर इजाजत है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम, एक मैं आपसे पूछता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक ऐसी होती थी कि सीना जो है ना आपसे उनका चेस्ट वो दाढ़ी उसे कवर यानी वहां तक पहुंचती थी दाढ़ी, ठीक है, बहरहाल कम कर सकते हैं इजाजत है, और हमारे बहुत से उलमा जो है उसको एक मुझ से ज्यादा नहीं बढ़ने भी देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई छोड़ना चाहे तो वो भी ठीक है, उसको भी गलत नहीं कह सकते। जी
जो थोड़ी सी गुंजाइश
वोटों से ऊपर तक हो मुजाहिदीन के लिए, हाँ कुछ मैंने भी कहीं सुना था, लेकिन मुझे उसकी ज्यादा तहकीक नहीं है, ठीक है, कि वो मुजाहिदीन के लिए क्या एक्सेप्शन बनती है, क्यों बनती है। अगर आपकी दाढ़ी से वो डरे जाते हैं तो वो ठीक है, मतलब अगर आपकी मूंछों से डरे जाते हैं, आजकल तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्या आपकी मूंछों से कोई डरेगा, ठीक है, आजकल तो वो घोड़े, तो हमने आज कोशिश करी है घोड़े वोड़े कुछ तैयार करने की ना, ताकि उनको डराए। अब टैंक तो नहीं कर सकते, तो घोड़ों के ऊपर ही कर लेते हैं, थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग। बहरा तो ये है। अच्छा, तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु है ना, उनकी दाढ़ी भी उस वक्त नहीं निकली थी जब तक वो 16-17 साल के थे। ग़ज़वा बदर में आप 20 साल के थे, और फिर तकरीबन तमाम ग़ज़वात में आदर सलम के साथ शामिल रहे, ठीक है, सिवाय ग़ज़वा हुनैन के। तो ग़ज़वा बदर में भी शामिल रहे, जो 2 हिजरी में हुई थी, इंशाल्लाह आप सबको याद रहेगा, ठीक है, और ग़ज़वा उहद जो कि 3 हिजरी में हुई थी, और ग़ज़वा खंदक द थर्ड मेजर, द वॉर ऑफ द ट्रेंचेस, ठीक है ना, बैटल ऑफ ट्रेंचेस, वो कुछ उलमा के नजदीक 4 भी है, लेकिन ज्यादा 5 हिजरी में हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जो गजवा खंदक हुई थी, 6 गजवा खैबर 6 हिजरी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फतह मक्का, जिसमें के कोई लड़ाई वड़ाई कोई खास नहीं हुई थी, बस खालिद बिन वलीद ने थोड़े लोगों को कर दिया था, खड़का दिया था हम कहते हैं, बाकी वो कोई लड़ाई वड़ाई उसमें नहीं हुई थी, तो वो फतह हो गया था मक्का मुकरमा। लेकिन मक्का मुकरमा फतह होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ ले गए थे, ताइफ की तरफ, गज़वा हुनैन वगैरह जो जहां पर हुआ था, और उसमें मुसलमानों की तादाद पहली दफा काफिरों से ज्यादा थी, ठीक है, और एक किसी ने गलती कुछ कर दी थी, कोई बात कर दी थी, और उसके ऊपर फिर आपको पता है क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, और ऐसा केओस हुआ था उसके अंदर, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक अतान, उस्मान गनी अतान, लेकिन ऐसा केओस हुआ था कि फिर बात बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना सहाबा के लिए तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रखी थी कि जरा सी भी गलती करो, नहीं भाई, फौरन फौरन पकड़ आती है, ठीक है। इसी वजह से याद रखें कि जिनको ज्यादा दीन मिल जाता है ना, वो अल्लाह की मर्जी से मिलता है ना जिनको, ठीक है। अब वो बेवकूफी की जब कोई बात कर देते हैं ना, मैं सहाबा की बात नहीं कर, सहाबा के लिए हम बेवकूफी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर, अब हम अपने लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई बेवकूफी बात करते हैं ना, फौरन पकड़ आती है, ठीक है, फौरन पकड़ आती है। तो ये बात, ये उसूल की बात है, ये याद रखें, ये उसूल नहीं बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, उसूल नहीं बदलते हैं, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड एट द प्लेज ऑफ अकबा, ठीक है, तो साथ भाई आप इधर भी बैठे मेरे से पता कर रहा। अच्छा, तो गजवा हुनैन जो था ना, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम इनको साथ लेके नहीं गए, क्यों, इसलिए कि इनको फतह मक्का के बाद उनको मक्का मुकरमा में छोड़ दिया, कि वो दूसरे नए जो लोग मुसलमान हुए हैं, इस्लाम में दाखिल हुए हैं, सारे के सारे चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हुए थे ना मक्का मुकरमा के लोग, तो उनको दीन सिखाएं, बिकॉज ही वॉज आलम बिल हराम वल बिल हलाल वल हराम, ठीक है, सबसे ज्यादा इनके पास इल्म था। अब सबसे ज्यादा से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ज्यादा इल्म था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ज्यादा इल्म था, बल्कि क्यों, आप सबसे ऐसा फरमाया लिल अक्सर हुक्म कुल, ठीक है, तो जो बाकी मेजोरिटी थी ना सहाबा की, उनके मुकाबले में इनके पास ज्यादा इल्म था, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सहाबा इनसे भी ज्यादा आलम थे, ऐसा नहीं है कि ही वॉज दी मोस्ट दी वन एंड ओनली दैट हैव मोस्ट इल्म ऑफ हराम एंड हराम, ऐसा नहीं होता, लिल अक्सर हुक्म कर, ठीक है। तो इनको फिर आप ने मक्का मुकरमा में छोड़ दिया था, ताकि अहले मक्का को तालीम दें हलाल और हराम के बारे में, ठीक है। अच्छा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत थी, और वो आप खुश नसीब सहाबी हैं कि एक मरतबा आप ने इनसे फरमाया कि ए मुआज, मैं सच कहता हूं कि मुझे तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि मैं सच कहता हूं कि मुझे तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, ठीक है। अब ये कितने यंग सहाबी थे, और ये कैसे ये स्टैंड आउट कर गए इस तरीके से, कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरह के इजहार इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं किया करते थे, ठीक है ना, कलेक्टिवली तो कर दिया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खुद मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने आगे लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जज्बाती बातों का ज्यादा इजहार नहीं किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन मुआज बिन जबल रतान के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ठीक है। अब मुआज बिन जबल रतान की कौन सी फीचर हमें नजर आती है जो कि उनको दूसरों से जुदा करती है? इल्म बिल हलाल वल हराम, ठीक है। और अगर आपने इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप सब ने कल का बयान गौर से सुना होगा और समझा होगा, तो कल का बयान क्या था कौन बताएगा? उसका अगर एक जिस्ट बयान किया जाए कल के बयान का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये तने बड़ों के लिए भी है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं दायरे जब तस्वीर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात उसमें आती है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
लेकिन दीन
दीन नहीं बदल सकते।
के
दीन अल्लाह के अहकामात का नाम है। ये थी कल के बयान की असल, ठीक है, बिल्कुल जिस मगज जिसको कहते हैं मगज, ठीक है, कि अल्लाह का दीन असल में अहकामात का नाम है, ठीक है ना। नॉस्टैल्जिया का नाम है नहीं, नहीं है। यादगारों का नाम नहीं है, सेलिब्रेशंस का नाम नहीं है, ठीक है ना, बल्कि वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, टर्शरी चीजें हैं, ठीक है। बेशक वो भी अहम है, दीन की सेकेंडरी चीजें भी अहम है, दीन की टर्शरी चीजें भी अहम है, ठीक है। लेकिन असल दीन क्या है? अल्लाह के अहकाम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। इसके जरिए से साजिद ने आपको बात समझाई थी कि इस दिन कुरान मजीद का नुजूल खत्म नहीं हो गया था, बल्कि अहकामात का नुजूल खत्म हो गया था। कुरान मजीद का नुजूल तो इस आयत के बाद भी हुआ था, इसी वजह से उलमा ने लिखा कि अहकामात का नुजूल खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने कहा दीन मुकम्मल हो गया, ठीक है। अभी क्या कॉमन सेंस बिट पुट पुट टू एंड टू टुगेदर, इसी को कहते हैं ना, पुटिंग द डॉट्स टुगेदर, पुटिंग द डॉट्स टुगेदर, इट्स सो इजी। अहकामात असल दीन है, ठीक है। और ये क्या थे? अलमहुम बिल हलाल वल हराम, अहकामात के ज्यादा इल्म रखने वाले, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के इनसे इनकी शक्ल अच्छी थी या इनका खानदान अच्छा था या इनके जो है वो कुछ मैनर्स अच्छे थे, बल्कि इनका ये वाली क्वालिटी थी कि इनके पास इल्म, दीन के असल का इल्म इनके पास सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो ये मोहब्बत की वजह बनी नबी अलैहिस्सलाम के, और ऐसी बनी कि इजहार भी फरमाया इस मोहब्बत का, ठीक है। अगरचे के टाइम क्लास का खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा और क्योंकि बात ये
कंप्लीट फास्ट है
है, माशाल्लाह अल्लाह उनको ज्यादा खराब 10 मिनट फास्ट रखी हुई है घड़ी। हम भी पहले यही करते थे, घड़ी को 10 मिनट आगे रखते थे ना तो फिर आसानी हो जाती थी। अजीब ह्यूमन साइकोलॉजी है, घड़ी को देखे कि टेंशन होती है, फिर उसके बाद आज नहीं है 10 मिनट अभी भी है। खैर, तो फरमाया कि अहद सरसम को हजरत मुआज से बहुत मोहब्बत थी और वो खुश नसीब सहाबी हैं कि एक मतलब ने फरमाया कि ए मुआज, मैं सच कहता हूं कि मुझे तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। तो अल्लाह के हुक्म दीन क्या है? अल्लाह के हुक्म ना, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म तुम्हें सबसे ज्यादा पता है तो मुझे तुम्हें इस वजह से मोहब्बत है, ठीक है। इसके बाद आपसे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जो तुम हर नमाज के बाद कहा करो? वो क्या कलिमात हैं? अल्लाहुम्मा या रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ठीक है, कि ऐ मेरे रब, आप मेरी मदद फरमाइए कि मैं आपका जिक्र कर सकूं, मैं आपका शुक्र कर सकूं और मैं अच्छी तरीके से इबादत कर सकूं, ठीक है। ये दुआ सिखाई नबी अलैहिस्सलाम ने इनको, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ठीक है। हर नमाज के बाद तुम इसको पढ़ा करो, क्योंकि नमाज के बाद का जो वक्त होता है ना इमीडिएटली बाद का, ये कबूलियत दुआ के औकात में से एक वक्त होता है, ठीक है। जैसे शब कदर कबूलियत दुआ का वक्त है, मुलतजम कबूलियत दुआ की जगह है, फलाना ये होता है ना इस तरह के। तो इसी तरह से हर नमाज के बाद का जो वक्त होता है ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज पढ़ते हैं तो गोया हम सबको दिन में 5 दफा जो है ना वो कबूलियत दुआ का वक्त मिल रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम मैक्सिमाइज करें और अच्छी अच्छी दुआएं अल्लाह ताला से मांगें, नबी अलैहिस्सलाम की सिखाई भी दुआएं भी मांगें और दिल से भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगें अपने अल्फाज में या अपने सोचों में, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और बड़ी इसके अंदर बेहतरीन इसमें तालीम क्या है कि देखें, जिक्र तो बंदा खुद करता है ना, शुक्र भी बंदा खुद करता है और इबादत भी बंदा खुद करता है, लेकिन ए अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए, मैं आपकी मदद के बगैर मैं आपका जिक्र भी नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद के बगैर आपका शुक्र भी नहीं कर सकता, मैं आपकी मदद के बगैर आपकी इबादत भी नहीं कर सकता, ए अल्लाह आप मदद फरमा दीजिए, ठीक है। तो ये जुबान से भी अदा करना, और अगर किसी का ये दिल में भी ये कैफियत बन जाए कि वाकई वो अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, यही उसको जिंदगी का मकसद मिल गया, ठीक है। जिंदगी का मकसद यही है कि अपने आप को जीरो करना और सब कुछ अल्लाह, ठीक है। तो अगर कोई सोच भी ऐसी बन गई किसी की, ही गॉट एवरीथिंग, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब की ऐसी सोच और ऐसी फिक्र बना दे। एक मरतबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमर रिजाल अबू बकर, निअमर रजुल, बल्कि निअमर रजुल अबू बकर, निअमर रजुल उमर, निअमर रजुल मुआज़ इब्ने जबल। अल्लाहु अकबर, कहां वो खुलफा, कहाँ वो यानी शेखैन कहा जाता है, अबू बकर रहता है उमर रहता है उनको शेखैन, ठीक है, और कहाँ मुआज़ बिन जबल रहता है एक यंग सहाबी, ठीक है। तो उनको इनके साथ मिला करके आप ने कहा कितना अच्छा आदमी है अबू बकर, कितने अच्छे आदमी है उमर, कितने अच्छे आदमी है मुआज़ बिन जबल रहता है, ठीक है। आजम ने अपनी हयात तैयबा के आखिर में हजरत मुआज़ रहता उनको यमन का हाकिम बनाकर भेजा था, और आप ही से कजाए शरी के बारे में वो मशहूर सवालात फरमाए थे कि तुम यमन जा रहे हो तो मैं तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके, अपना खलीफा बना करके, वहां का काजी बना करके भेज रहा हूँ, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में कौन काजी थे, नबी अलैहिस्सलाम खुद। जब कोई प्रॉब्लम होता था, जब कोई मैटर में डिसाइड करना होता तो आप के पास लोग आते थे, आप फैसला करते थे, ठीक है। तो मुआज़ बिन जबल रहता उनको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के इतनी यंग एज, अब ये कौन सा साल होगा इसको भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की वफात का साल था, ठीक है ना, जब मुआज़ बिन जबल रहता उनको आप डिप्यूट कर रहे थे यमन की तरफ, ठीक है। तो गजवाए बदर में नबी मुआज़ बिन जबल रहता उनकी 20 साल उम्र, तो कितने साल के बाद इंतकाल हुआ था आप का, इसके 8 साल के बाद, ठीक है, 11वीं 11 हिजरी, तो 9 साल हो गए, ठीक है, 9 + 2 28 29, जस्ट 28 29 ईयर्स, एंड नबी अलैहिस्सलाम इज मेकिंग हिम हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी बस अब तुमने ही जाना है, तुमने ही सारा काम करना है वहां पे, ठीक है। तो आप सबसे ने पूछा कि जब तुम वहां जाओगे तो मैं वहां तो नहीं होऊंगा, और आपको पता है उस जमाने में फोन व्हाट्सएप कुछ भी नहीं होता था, तो अब जब तुम्हारे पास कोई सिचुएशन आएगी तुम्हें उसका फैसला करना होगा तो तुम कैसे फैसला करोगे, ठीक है। तो मुआज़ बिन जबल ने फरमाया बे किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब से मैं फैसला करूंगा। कल क्या बात हुई थी के? आयत बगैर अल्लाह हकमा अफगैर अल्लाह हकमा अब्तगी अब तक,
ठीक
ठीक है, कि मैं अल्लाह की किताब के होते हुए मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना वो बनाऊं, ठीक है, अपना हकम बनाऊं, अपना काजी बनाऊं, ठीक है। तो आपको समझाया था कल के बयान के अंदर कि भाई अल्लाह को हाकिम बनाने का मतलब नहीं कि अल्लाह उतर करके आपका हुक्म करेंगे, बल्कि अल्लाह की किताब का जिसके पास इल्म है वो बंदा हाकिम बनेगा, वो बंदा फैसले करेगा, इंसान फैसले करेगा। तो इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम मुआज़ बिन जबल रहता तो ही वाज अ ह्यूमन बीइंग ना, लेकिन ही वाज आलम बे किताब अल्लाह, ठीक है, तो उनको भेज रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उस पर खामोश नहीं रहे, बल्कि फरमाया अगर तुम्हें कोई हुक्म अल्लाह की किताब में ना मिले तो फिर क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आप सल्लम की सुन्नत से फैसला करूंगा, कि आप सल्लम ने ऐसे सिचुएशंस के अंदर क्या फैसले किए, या अल्लाह की किताब में अगर एक्सप्लिसिटली इसका हुक्म नहीं था, ठीक है, तो इम्प्लिसिटली तो अल्लाह की किताब में हुक्म मौजूद है, इम्प्लिसिटली तो गाइडेंस सभी सारी मौजूद है, लेकिन उस इम्प्लिसिट गाइडेंस के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे एक्सप्लिसिटली अमल किया, ठीक है? तो इसको कहते हैं सुन्नत से अमल कर, सुन्नत के मुताबिक अमल करना, ठीक है? बहरहाल ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन बस किताबुल्लाह फिर फरमाया सुन्नत रसूल, ठीक है? अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने आगे भी पूछा, अगर रसूल के फैसले और सुन्नत में भी तुम्हें ना मिले कोई बात, फिर क्या करोगे? ठीक है, जैसे पिछले याद है भैंस, अगर तुम्हारे सामने भैंस आ जाए तो कैसे फैसला करोगे कि ये हलाल है कि हराम है? ठीक है, भैंस का जिक्र तो ना किताबुल्लाह में है ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु के अंदर है, तो तुम ये हम आपको ऐसा मिसाल बोल रहे हैं ना, ठीक है? तो उन्होंने आपसे पूछा कि अगर सुन्नत में भी तुम्हें, यानी सुन्नत में भी हर हर चीज का हुक्म तो मौजूद नहीं होगा ना, ठीक है? कोई नई चीज, नई सिचुएशंस भी पेश आती है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि फिर मैं इज्तिहाद करूंगा, ठीक है? इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि मैं कुरान मजीद का जो इल्म है उसको भी यूज करूंगा, सुन्नत का इल्म भी यूज करूंगा, एंड देन आई यूज माई बेस्ट जजमेंट, ठीक है? और मेरी नीयत, इज्तिहाद में नीयत का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अल्लाह की रजा की खातिर, ठीक है? आखिरत की जगह अल्लाह की रजा की खातिर मैं फैसला करूंगा, लेकिन इल्म के साथ फैसला करूंगा। तो इज्तिहाद में दो चीजें कंपलसरी हैं, एक नीयत का सही होना, क्या मतलब? ये नहीं कि मैं कोई फैसला करूंगा जो कि मुझे सूट करता हो खाली, ठीक है, या मेरे किसी रिश्तेदार को सूट करता हो, नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रजा मेरी नीयत होगी, अल्लाह 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 की रजा और आखिरत की जजा मेरी नीयत होगी, और इल्म किताब अल्लाह सुन्नत का मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं अपनी राय को इस्तेमाल करूंगा। अब जो फैसला करते हैं ना, ये इज्तिहाद कहलाता है, ठीक है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं इज्तिहाद का इस्तेमाल करूंगा और इससे फिर फैसला करूंगा और अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं करूंगा, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुन करके बहुत खुशी का इजहार किया और उनके सीने के ऊपर ना खुश होकर के ऐसे हाथ मारा, ठीक है? ये नबी अलैहिस्सलाम की तवज्जो का तरीका हमारे मशायख फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम जब किसी के ऊपर खसूसी तवज्जो डालते थे ना, बाकायदा सीने के ऊपर हाथ ऐसे मारते थे, ठीक है? तो इनके सीने के ऊपर हाथ मारा और फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने रसूल के नुमाइंदे को इस बात की तौफीक दी जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक है, ठीक है? अल्फाज भी अरबी के इसके मुझे याद होते थे, लेकिन अभी वाफका रसूल रसूल अल्लाह, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लजी वाफका, जिसने के तौफीक दी रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के रसूल है उनके रसूल थे ना, ठीक है? यानी उनको नबी अलैहिस्सलाम अपना मैसेंजर बना करके, अपना नायब बना करके आगे भेज रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, हदीस के अंदर ये मौजूद है, ठीक है? रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल का रसूल, ये खुद रसूल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट वही नाजिल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इनको अपना मैसेंजर, अपना नायब बना करके भेजा, तो इस तरीके से सेकेंडरी लेवल के ये रसूल बने, ठीक है? तो आपसे मैंने बहुत खुशी का इजहार किया। और फिर आखिरी बात आज की क्लास के लिए, वो ये कि ये तो बात, ये कॉन्वर्सेशन हो गई, ये कॉन्वर्सेशन गालिबन मस्जिद नबी में हुई होगी या नबी रसूल किसी और जगह पे बैठ करके इस तरह की सारी बात की होगी इनके साथ। अब जो है ना वो वक्त आया जब इनको एक्चुअली निकलना था मदीना मुनव्वरा से सफर के लिए, ठीक है? तो मुफ्ती उस्मान साहब बड़े अजीब तरीके से इसका इजहार किया इसके अंदर, कि फरमाया कि यही नहीं बल्कि जब हजरत मुआज़ की रवानगी का वक्त आया तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अलविदा कहने के लिए खुद तशरीफ ले गए, ठीक है? यानी मदीना मुनव्वरा से बाहर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए तशरीफ ले गए। हाँ, इन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वफ़क़ा रसूला रसूलिल्लाही लिमा युर्दा रसूल रसूलुल्लाही, कि जिसके ऊपर अल्लाह का रसूल राजी है उसकी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को तौफीक दी, ठीक है? तो यह हदीस के बाकायदा अल्फाज है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, उन्होंने आप ने इनको जो है ना वो ऊँटनी पर सवार कराया, आप ऊँटनी में बैठ जाए, और नबी अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी की नकील पकड़ी और साथ लेकर के उस ऊंटनी को उनके मदीना मुनव्वरा से बाहर तक तशरीफ लेके गए। ठीक है, उस जमाने का मदीना मुनव्वरा कितना था, जो आज की मस्जिद नबवी है ना पूरी की पूरी, ठीक है, वो उस जमाने का शहर था। और उस शहर से बाहर निकलते ही कब्रिस्तान था, क्योंकि कब्रिस्तान शहर के बाहर होता है। ठीक है, तो जन्नतुल बकी वॉज आउटसाइड ऑफ द सिटी। लेकिन ये सिटी क्या मतलब, ये सिटी से मुराद ये है कि ये जो सिटी का कोर होता है ना असल, जिसको आज के जमाने में गोरे लोग क्या कहते हैं,
सेंटर
सिटी
डाउन टाउन
डाउन टाउन अप टाउन, ये सब मिल मिला करके टाउन बनता है, बेसिकली टाउन कहते हैं ये। ठीक है, और फिर इसके बाहर भी सिटी का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन उसको आजकल अंग्रेजी में सबर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अर्ब, सब अर्ब। ठीक है, तो गोया दिस रीजन जिसके अंदर अब मस्जिद नबवी है, ये असल अर्ब था, अर्बन एरिया। और बाकी भी बहुत सारे इलाके थे, जैसे कि मस्जिद क़िबलतैन, वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो मदीना मुनव्वरा कैसा समझी जाती थी ना, तो वो फिर सबर्ब्स थे मदीना मुनव्वरा के। ठीक है, तो वो अच्छे खासे इलाके थे। कुबा वगैरह ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर थे, या उनको बाहर अलग एक टाउन समझा जाता था, लेकिन बाकी भी बहुत सारे, जैसे आप निकले ना ओहद की तरफ जाएं, तो अब राइट लेफ्ट बहुत जमाने में आबादियां थी सारी की सारी ना, बनू जोफर का कबीला है, बनू सलमा का कबीला है, और ये सब, तो ये सब जो है वो फिर वो उसके वही यानी मुजाफात, हमारे यहाँ कराची में कहते हैं मुजाफात, कराची और उसके मुजाफात में आज से उर का वक्त ये है, टीवी में सुना करते थे मुझे। खैर, तो आप सरसरम बाहर तक तशरीफ ले गए, तो आप सरसरम काफी देर तक उनके साथ साथ चलते रहे। आप सरसरम को मालूम था कि ये अपने महबूब फिदाकार से मेरी आखिरी मुलाकात है। ठीक है ना, यानी ये ऐसे नौजवान हैं जो कि मेरे ऊपर फिदा हैं। ठीक है ना, ये यानी कुर्बान है मेरे ऊपर। आप सरसरम की बात पता थी, लेकिन ये भी पता था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात है, इनको पता नहीं था ये वाली बात। अल्लाह ताला ने नबी सलाम को यह बता दिया था कि बस अब आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दूर भेज रहे थे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जज्बात का इजहार बहुत कम मौके पे साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जज्बाती हो गए, हुए थे नबी अलैहि वसल्लम, लेकिन बहुत कम मौकों पे। उनमें से एक मौका क्या था कि नबी नबी अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की खबर पर तशरीफ ले गए, वो हमने सुना पड़ों से कि उस वक्त नबी अलैहि वसल्लम को नॉट होल्ड ही सेल्फ, ठीक है ना, रो पड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी तरह जब नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में जो उमामा पैदा हुई थी, उनकी वफात के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन फरमाया कि ये यानी कोई नाशुक्री नहीं है, बस ये जज्बात है, निकल आते हैं आंसू इंसान के। ठीक है, तो इस तरह से कम मौकों पे आप से जज्बात का इजहार साबित है, लेकिन ये हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपके खुसूसी ताल्लुक का करिश्मा है कि इस मौके पे आप सल्लम की जुबान मुबारक से कुछ ऐसे अल्फाज सादिर हुए जो एक आंखों से दूर होते हुए महबूब को जुदा करते वक्त उसके दिली जज्बात के आयनादार होते हैं, जब कोई अपने महबूब को जुदा करता है। ठीक है, आप सल्लम ने फरमाया, या मुआज, ए मुआज, बहुत मुमकिन है कि शायद इस साल के बाद मेरी तुमसे मुलाकात ना हो, और जब तुम लौट के मदीना मुनव्वरा वापस आओगे तो तुम्हें मेरी मस्जिद पर से गुजरना होगा या मेरी कब्र पर से गुजरना होगा। ठीक है, या तो तुम मेरी मस्जिद पर से गुजरोगे या मेरी कब्र के ऊपर से गुजरोगे, यानी उसके साथ से गुजरोगे। ठीक है, तो हजरत मुआज जो है ना, वो पहले ही जुदाई हो रही थी, बहुत दूर जा रहे थे, और समझ रहे थे कि अब पता नहीं 1.5 साल बाद मुलाकात होगी, 2 साल बाद मुलाकात होगी, कब मैं वापस आऊंगा, कब नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखने की मुझे मौका मिलेगा, ये समझ रहे थे। लेकिन अब तो उनको कंफर्म हो गया ना कि दिस इज आवर लास्ट मुलाकात, अब नहीं मिलना मैंने नबी अलैहिस्सलाम से। तो हजरत ने लिखा है कि पहले शायद ये दिल को तसल्ली देते रहे होंगे कि 1-1.5 साल की जुदाई होगी, लेकिन जब सरकार की जुबान मुबारक से ये जुमला सुना तो उनको यकीन हो गया कि अब ये जलवा जीते जी मुझे नजर नहीं आने वाला है, तो उनके मुंह से आह निकली और आंखों से आंसू जारी हो। ठीक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज रो नहीं। ठीक है, मुआज रो नहीं, और ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना रुख भी मोड़ कर मदीना मुनव्वरा की तरफ कर दिया। क्या बात, खुद भी रोना शुरू हो गए। ठीक है, खुद रोना शुरू हो गया आपसे, जैसे कोई बड़ा होता है ना कि भाई बच्चा मेरे आंसू ना देखे, ठीक है, बच्चा मुझे रोता हुआ ना देखे। तो नबी रसूलुल्लाह ने चेहरा मुबारक फेर लिया, मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस आना शुरू हो गए, और चेहरा फेरने के बाद फरमाया कि या मुआज इन अवल नासे फिल मुत्तकून मन कानू वही सुखा, कि वो लोग जो मुझसे सबसे करीब तर लोग हैं ना, वो हैं जो मुत्तकी होंगे, गुनाहों से बचने वाले, ठीक है, वो मुझसे करीब तर होंगे, ख्वाह वो कोई भी हो ख्वाह वो कहीं भी हो, ठीक है ना, यानी मुझसे फिजिकल डिस्टेंस उनका जितना भी हो और मुझसे एंसेस्टोरियल डिफरेंस उनका कितना भी हो, यानी किसी कबीले के हो, किसी जगह के रहने वाले हो, ठीक है, अरब ना हो, अजम हो, कुरैशी ना हो, किसी और कबीले को हो, गोरे हो, काले हो, चाइनीज हो, जहां के भी हो, जैसे भी हो, अगर वो तकवा वाले हैं तो वो मुझसे ज्यादा करीब तर, ठीक है, तो अब मुझ में और तुम में फिजिकल जुदाई तो इतनी हो रही है, लेकिन डोंट वरी, अगर तुम तकवा की जिंदगी पे कायम रहोगे ना तो तुम मुझसे सबसे करीब हो, ठीक है। तो इसके साथ फिर मुआज़ यमन चले गए, और जब वापस आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब हकीकी के पास पहुंच चुके थे। इसके बाद हजरत मुआज़ मदीना मुनव्वरा में नहीं रहे, शाम जाने का इरादा कर लिया, पेशे नजर गालिबन यही था कि वहां जिहाद में हिस्सा लेंगे, यहां तक कि शहादत की मंजिल हासिल हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उन्होंने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफा वक्त थे उनसे फरमाया कि इनको मदीना मुनव्वरा में रोक लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े आलिम हैं, हमें इल्म की जरूरत है, लोगों को पढ़ाएंगे वगैरह, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि नहीं, इन्होंने अपने लिए शहादत का रास्ता पसंद कर लिया है, मैं नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रजान का ये इश्तेहार था कि नहीं भी इनको हमें रोकने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है, अली रजान भी हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजान भी हैं, और भी साथी हैं, इनका काम हो जाएगा, इनको शहादत के रास्ते से मैं नहीं रोकना चाहता। चुनाचे ये मुआज आ गए, चुनाचे मुआज बिन जुबैर रजान जो है वो शाम आ गए, और यहाँ पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रजान के ये राइट हैंड मैन बन गए, और इसके बाद फिर हमने वहां पे भी पढ़ा है। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बात कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना रह गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने आप से, यानी अल्लाह ताला से और अपने हबीब अलैहिस्सलाम से टूट के मोहब्बत करने वाला बनाए, और इसके लिए जो करने की जरूरत है यानी तकवा इख्तियार करना और दीन की समझ और इल्म हासिल करना, क्योंकि मोहब्बत असल में जो है ना वो इन वजूहात से ही होती है, ठीक है, तो ये वजूहात भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
Recording stopped.